देवियों सज्जनों, आप सबको नमस्ते। हम गीता के चैप्टर 18 पर हैं। मेरे साथ मिलके बोलिए, नियतम संगरहिता मराग द्वेषता कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तदराजसमुदाहृतम्। तीन तरह का कोई भी काम करते हैं, नेचुरली तीन तरह से हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक जिसको एक ही व्यक्ति अलग अलग काम के करते समय जो उसके अलग अलग एटीट्यूड्स होते हैं, उससे फिर काम को अलग अलग तरह से क्लासिफाई किया जाता है। एक जब आप नियत समझ के कि इट्स माय ड्यूटी, आई एम ओब्लाइज्ड टू डू इट, यही भाव से जब आप किसी भी काम को करते हैं, वो प्रोफेशनल काम हो, घर के काम हो, सोसाइटी का काम हो, कम्युनिटी का काम हो, कोई भी काम को, इवन पैसा कमाने के लिए भी काम को अगर हम ड्यूटी समझ के करते हैं, संग रहितम विदाउट एनी अटैचमेंट करते हैं, विदाउट एनी अफेक्शन करते हैं, विदाउट एनी ग्रीड, कोई लालच के बिना या किसी द्वेष के बिना, कोई बुरी भावना के बिना करते हैं, और उसका रिजल्ट क्या होगा उसके साथ खुद को अटैच्ड ना करके करते हैं, वो सात्विक कर्म होता है। और राजसिक कर्म जब किसी फल की इच्छा से कि इससे क्या मिलेगा इस भाव से हम कोई काम करते हैं, या अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। जनरली जो ये मिडिल लेवल के कर्म होते हैं, जो कॉमन मैन है, जो आम इंसान है, वो इस मिडिल कैटेगरी में आता है, जो बहुत मेहनत करता है या तो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, या उसकी कोई इच्छा है उसको पूरी करने के लिए। इन दोनों को आप इस तरह से देखिए, मान लीजिए आप आर्य समाज में काम करते हैं, वॉलंटियरिंग करते हैं, हेल्प करते हैं, मेंबर हैं, कुछ भी हैं। दो तरीके से आप कर सकते हैं, या तो आप ये मेरी ड्यूटी है, मेरी आस्था है, बस आप उस भाव से करते हैं, फिर आपका उसके साथ कोई अफेक्शन नहीं होता है कि मैं हूं, मेरे कारण हो रहा है, मेरे बिना नहीं होगा, मुझे इंपोर्टेंस मिले, मुझे काम इंपोर्टेंस मिला, फिर ये फीलिंग नहीं होगी। अब क्योंकि ये फीलिंग नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि ना आपका राग है, अगर कोई आपको प्रेज करता है तो आप खुश हो जाएंगे, आपको कोई निंदा कुछ नहीं बोलता है तो आप दुखी हो जाएंगे। पर अगर आपके अंदर कोई, आप अपनी ड्यूटी समझ के करते हैं, क्या कभी कोई अपने बच्चों को इसीलिए पालना बंद कर देगा क्योंकि लोगों ने तारीफ करना बंद कर दिया कि तुम अपने बच्चों को पालते हो? क्या हम बच्चों को और अच्छी तरह पालेंगे अगर हमें सोसाइटी में ज्यादा प्रशंसा मिलने लगे, देखो कितने अच्छे पेरेंट्स हो, बच्चों को बढ़िया पालते हो? कभी इफेक्ट पड़ता है? अगर पड़ता हो तो बड़ा खतरनाक है। अगर ऐसा भी कोई पेरेंट्स है जो सोसाइटी से इनपुट लेकर के बच्चों को पालने में, पालन पोषण में उसकी अप डाउन होता रहता है, वो पेरेंट्स तो खतरनाक है बच्चों के लिए। आप करते हैं, आपको उससे किसी से कोई तारीफ सुनने की जरूरत नहीं है, ना उससे आप ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, ना कोई करता नहीं है क्रिटिसाइज करता या आपको तारीफ नहीं करता, तो भी ना आपकी बच्चे पालने में कोई कमी होती है। क्यों? क्योंकि वहां सेंस ऑफ ड्यूटी ज्यादा होता है, सेंस ऑफ लव ज्यादा होता है, वहां ईगो कम मैटर करता है। पर वैसी बात भी नहीं है, हमने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है, जानते हैं, जो बच्चों को पालने में भी ईगो दिखाते हैं। वो बच्चों को रेस्टोरेंट में खाना खिलाए तो उनको रास्ते में वो पापा ये एक्सपेक्ट करता है कि बच्चे ने थैंक्स नहीं बोला, घर आते आते बच्चे के ऊपर इतने हंगामा हो जाता है कि कितना बैड मैनरली बिहेव करते हो, तुम्हें मैंने रेस्टोरेंट लेकर गया, तुम दोनों को तीनों को जो भी बच्चे हैं, इतना बढ़िया खाना खिलाया, इतना पैसा खर्च किया और तुम्हें इतना भी मैनर नहीं है कि आप कहो थैंक्स पापा। यकीन मानिए उन बच्चों का किस्मत खराब है। अगर कोई मां बाप ऐसा एक्सपेक्ट करता हो बच्चों से, बच्चों से भी, और सोचिए उसकी पड़ोसियों का क्या हालत होगा अगर वो कुछ हेल्प कर देते होंगे, जिस कम्युनिटी में वो कुछ डोनेशन या कुछ हेल्प करते होंगे उनका खून तो चूस रहे होंगे। तो ये जो राग और द्वेष के साथ काम करने की प्रवृत्ति है, ये हम वहां नहीं करते हैं जहां नेचुरली हमारे अंदर वो सेंस ऑफ ड्यूटी आ जाती है। और वही फीलिंग आप ऑफिस में करते हैं, अपने बिजनेस में करते हैं, कम्युनिटी में करते हैं, तो वो सात्विक हो जाता है। ऐसा नहीं है कि घर के लिए जो हम काम करते हैं अपने घर के लिए वो छह महीने करते हैं, छह महीने नहीं करते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। भाई देखो बेटे, मैंने एक साल तक तुम्हें मैंने स्कूल लेने लाने में हेल्प किया, ड्रॉप किया, पिकअप किया, उधर ले गए, बहुत काम किया, अब एक साल तक मैं नहीं कर सकता। नियत है, आप करते हैं जब तक वो अपने पैर पे खड़ा नहीं हो जाता है, जब तक वो कहे कि अब आपकी जरूरत नहीं है। बहुत सारे माँ बाप तो हैं कि बच्चे बड़े हो चुके हैं, 40-45 साल के हो चुके हैं, उनके भी बच्चे हो चुके हैं, तो भी माँ बाप छोड़ने को तैयार नहीं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। तो जब आपके अंदर वो सेंस ऑफ ड्यूटी आता है, फिर ना आप राग से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, ना द्वेष से होते हैं, ना उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा उसका परवाह करते हैं। उसने थैंक्स बोला ना बोला वो आपके लिए मैटर नहीं करता, किसने तारीफ किया नहीं किया वो आपके लिए मैटर नहीं रहता। और ऐसा हर व्यक्ति कहीं ना कहीं करता है, हमारे में से हर व्यक्ति, हमारे छोड़िए बुरा से बुरा व्यक्ति भी लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसा काम करता है जहां उसका वो सेंस ऑफ ड्यूटी ज्यादा हावी होता है, जहां वो ये नहीं केयर करता कि इसके बदले मुझे क्या मिलेगा या इसके बदले मुझे पब्लिक से क्या अप्रिसिएशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। पर जिस व्यक्ति का ये नेचर बन जाए, फिर तो उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी ही अलग हो जाएगी। तो कर्म जहां कुछ एक्सपेक्टेशन ना हो, अपनी ड्यूटी भाव से हम करते रहते हैं, वो कर्म सात्विक है। और राजसिक जहां कोई फल की इच्छा है, कुछ पाने के लिए हम करते हैं, हो सकता है बहुत सारे पेरेंट्स और हो सकता नहीं हमारे जैसे लोग जो पब्लिक में रहते हैं हमें दिखता है, और बहुत सारे लोगों को भी दिखता होगा आपके अपने पड़ोस में, आस पड़ोस में भी। तो जहां इवन आप अपने बच्चों को भी पालते हैं कुछ एक्सपेक्टेशन के साथ कि ये मेरे साथ आगे इसका रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, या कहीं भी हम कोई काम करते हैं उसका रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा सोच समझ के करते हैं, घर से पैर बाहर रखते हैं तो पहली बार सोचते हैं कि इससे मुझे क्या मिलेगा। बैकयार्ड में एक पौधा भी लगाते हैं तो सोचते हैं इससे क्या मिलेगा। ऐसे व्यक्तियों को बहुत कुछ मिलता भी नहीं है। देवियों सज्जनों, आप अपने बैकयार्ड में अगर वैसे ही कंटीले झाड़ भी लगा देते हैं ना, विदाउट थिंकिंग कि इसका रिजल्ट क्या होगा, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। कम से कम रोज आप 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा एक्सरसाइज तो हो जाएगा, जिसको आप कभी काउंट नहीं करते। आपकी कोलेस्ट्रॉल तो कम होगा। आप बिना किसी कंसिक्वेंस सोचे कोई भी काम करिए, उसका अच्छा रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है। और हर एक में जब फायदा और लाभ ढूंढते हैं, ऐसे व्यक्तियों को लाइफ में बहुत ही कम फायदा मिलता है। तो ये एक स्मार्ट डिसीजन होता है। कभी कभी हम बिना इसका मुझे क्या फायदा सोचे ही काम पर कूद पड़ना, क्योंकि जो एक लॉ ऑफ नेचर है वो ये है कि आप कुछ भी करते हैं उसका रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है। आप सोच के करें, बिना सोच के करें, आप फल की इच्छा से करें, बिना फल की इच्छा से करें, काम किया तो रिजल्ट मिलेगा। अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा, पेड़ लगाया तो पेड़ का कोई ना कोई फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर लाभ और फायदा देख के जो काम, जब जो काम होता है, या कभी कभी, कभी कभी नहीं, एक 0.5% अलग कर सकते हैं। ईगो के कारण हम काम करते हैं कि ईगो को सेटिस्फेक्शन मिले, कि लोग मुझे तारीफ करें, करें कि आपने बड़ा अच्छा काम किया, वो किया वो किया। अब बहुत मेहनत करके करते हैं और राजसिक होता है। ज्यादातर देखेंगे हम सबका जो मेहनत हम करते हैं, जिसके लिए भी मेहनत करते हैं, घर के लिए, गाड़ी के लिए, पैसे के लिए, सुख के लिए, सुविधा के लिए, एक सर्टन लेवल के बाद वो एक्चुअली उसका कोई फायदा हमारे लाइफ में नहीं होता, ना जिंदगी भर कभी नहीं होने वाला। सिर्फ एक फायदा होता है कि हम सोचते हैं कि हमारे ईगो को वो सेटिस्फाई करता है। जब एक लिमिटेशन के बाद भी हम कमाते हैं, वैसे एक सर्वे से पता चलता है कि व्यक्ति अगर 80,000 से 1,20,000 तक कमाता है, 80,000 तक अगर कोई कमाता है, तो उसकी सारी जो भी जरूरतें हैं साल की वो पूरी हो सकती है, जितनी भी जरूरतें हैं। और 1,00,000 से लेकर के मिलियन बिलियन मिलियंस तक कमाने वालों के लाइफस्टाइल, लाइफ में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। इसका मतलब आप 1,00,000 कमाएं या 10,00,000 कमाएं, आपके लाइफ में ज्यादा अंतर नहीं आने वाला है। और कोई मिलियन से ऊपर होने के बावजूद भी दिन रात सर फोड़ता रहता है, तो वो अपने लिए तो नहीं करता है ना, अपने किसी फल के लिए तो नहीं करता, सुख के लिए तो नहीं करता, वो और किसी के लिए करता है। वो क्या चीज है? तो आप सोच रहे होंगे किसी भाई पब्लिक वेलफेयर के लिए करता है, लोगों को जॉब देने के लिए करता है। लोगों को जब मिलता है वो साइड इफेक्ट होता है, उसका इंटेंशन नहीं होता है कि लोगों को जब मिले और मैं इन्वेस्ट करूं। ऐसा हो जाए तो फिर तो धरती देव स्वर्ग बन जाए। ईगो को सेटिस्फाई करना है, मेरे पास इतना है, उसके पास इतना है, मुझे उससे आगे बढ़ना है। और आप देखिए हमारे घर, हमारे गाड़ियां, हमारे कपड़े, हमारे रिलेशनशिप, इन सब के बैकग्राउंड में ज्यादातर पहला रीजन जो गीता बता रहा है, काम है, इच्छा है नेचुरली, पर एक सर्टन लेवल के बाद वो इच्छा नहीं रहती है, वो जरूरत नहीं होती है, वो ईगो को सेटिस्फाई करना हो जाता है। और हम बहुत मेहनत करते हैं, इवन कम्युनिटी सर्विस में भी आपको इस तरह के अलग अलग एटीट्यूड के साथ काम मिलेगा। कुछ इसीलिए करते हैं, मन को संतोष मिलता है कि भगवान ने बहुत कुछ दिया है। इवन जिसके पास बहुत कम भी है वो भी सोचता है भगवान ने मुझे बहुत दिया है। वो तो अलग बात है कि हर व्यक्ति की अपना सेटिस्फेक्शन का लेवल है। किसी के पास बहुत कुछ होने पर भी लगता है भगवान ने मुझे क्या दिया, और बहुत लोगों के पास बहुत कम है रिलेटिवली, उनको लगता है प्रभु ने बहुत दिया है। तो कुछ दूसरों के लिए भी करें, कम्युनिटी के लिए करें, सोसाइटी के लिए करें, अच्छे के लिए करें। वो करते हैं तो उनको सुकून मिलता है, किसी को हेल्प करते हैं, किसी पड़ोसी को, दोस्त को, अनजान व्यक्ति को हेल्प करते हैं तो उनको अच्छा लगता है। किसी कम्युनिटी में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, वहां सेवा करते हैं तो उनको अच्छा लगता है। दैट्स इट। कोई और एक्सपेक्टेशन नहीं है, कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है, कोई ट्रेनिंग लेकर आए हैं इसको करने से स्वर्ग मिलेगा नरक मिलेगा, नहीं। उनको अच्छा लगता है, वो सात्विक है। राजसिक तो थोड़ा रिलेटिवली कम है, कुछ उद्देश्य लेकर आते हैं, चलो सोसाइटी बहुत जरूरी है, लाइफ में 30-40 साल पैसा कमाना और बच्चे पालने में ही बिता दिया, बीबी बच्चे पालने में, बुढ़ापा में समय कैसे कटे, चलो आर्य समाज चलते हैं, किसी मंदिर चलते हैं, इसी बहाने थोड़ा सोशलाइजेशन हो जाएगा, लोगों से फ्रेंड बन जाएंगे, काम करेंगे तो लोग देखेंगे, थोड़ा रिपुटेशन बनेगा सोसाइटी में, थोड़ा काम नाम बनेगा वगैरह वगैरह वगैरह। इंडिया हाउस में जुड़े हैं, इधर कहीं भी जुड़े तो थोड़ा लोगों को जाने। अभी क्या है कि 60-70 साल हो गया, अपने अलावा कुछ तो सोचा नहीं है, बस मैं, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मैं, मेरा पति, मेरे बच्चे, उसके अलावा और कुछ तो सोचा नहीं, पड़ोसी तक मुझे ठीक से जानता नहीं है। अब लाइफ में काफी उबाऊ आ चुका है, बच्चे भी बड़े होकर चले गए हैं, थोड़ा चाहिए अब सोशल सपोर्ट सिस्टम चाहिए, कामेप सुना कुछ पाने की इच्छा से चलते हैं। गीता ने बुरा नहीं कहा, अगर ऐसा कोई करता है तो बुरा मानने की जरूरत नहीं, वो भी जरूरत है, मतलब ये सेकेंड लेवल का होता है। अब दूसरा है अहंकार, ईगो। ईगो क्या, पोस्ट मिलेगा, एक पावर आएगा, मुझे 100 लोग जानते हैं, 1000 लोग जानते हैं, कम्युनिटी में लाखों लोग जानते हैं, इसी बहाने मेरी प्रसिद्धि बढ़ेगी, यश मिलेगा वगैरह वगैरह वगैरह। ये जो यश है, एम्बिशन है, ये उस अहंकार का पार्ट होता है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर जाते हैं, पड़ोस को पता नहीं चलता, पत्नी को पता नहीं चलता पति कितना अच्छा काम कर जाता है, या पत्नी को नहीं चल पाता है कभी कभी पति क्या कर गया। बहुत सारे लोग कोई छींकते समय किसी को अगर उन्होंने नैपकिन भी पकड़ा दिया हो तो 1000 लोगों तक मैसेज चला जाता है, वो अमुक आदमी ने छींका था ना, उसने उसको नैपकिन दिया था, हेल्प किया था। मतलब कुछ भी करो ढिंढोरा पिटना जरूरी है, बताना जरूरी है, ये किया मैंने, ये किया। खुद नहीं बता पाए तो अपने लोगों को बताया जो दूसरों तक पहुंचा सके, मैसेज कर सके। अजाब मात बात पहुंचनी चाहिए दूर दूर तक। क्यों, ये किस टाइप के एटीट्यूड है, ईगो, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना है, 2-4 लोग मुझे जाने। बहुत सारे लोग काम शुरू करते हैं, जॉब की जरूरत होती है, काम की जरूरत होती है, नाम की जरूरत होती है, इवन कम्युनिटी सर्विस हो या सेल्फ सर्विस हो, मतलब खुद को प्रमोट, खुद के लिए फायदे के लिए हो, काम एप सुना जहां खुद जुड़ा रहता है, कम्युनिटी में कभी कभी जब जब, या तो हम ईगो के लिए करते हैं या कुछ और रिजल्ट के लिए, दोनों दोनों उद्देश्य से। कभी कभी शुरू शुरू में लोग को जाते हैं, काम करते हैं, कंप्रोमाइज करते हैं, अपने ईगो को भी बहुत दबा के रखते हैं,
क्योंकि स्टैंड करना है, अंदर घुसना है, एस्टैब्लिश होना है। सब गालियां, खराब व्यवहार सब सुनने को तैयार हैं। जो पावरफुल हैं उनकी फ्लैटरिंग करना, बटरिंग करना, तारीफों के पुल बांध देना, रिश्ते ढूंढ के जोड़ना चलता रहता है। कब तक? जब तक वो एक एस्टैब्लिश्ड हो जाते हैं, ऑफिस में, कंपनी में, कहीं भी। अब जब एस्टैब्लिश्ड हो गए, क्योंकि इस व्यक्ति का नेचर जो है, हमेशा ध्यान रखिए, जो जरूरत से ज्यादा फ्लैटरिंग करता है, वैसे तो उससे डरने की जरूरत है ही, पर ध्यान रखिए उसका अपना भी इंटेंशन है कि कोई दूसरा उसको फ्लैटर करे। जो अपने बड़ों के, जो किसी फायदे के कारण पावरफुल लोगों के सामने जल्दी झुक जाता है, यकीन मानिए ऐसा व्यक्ति का यह भी इंटेंशन है कि जो उसके बराबर या छोटे हैं वो जल्दी से जल्दी उनको झुकाना भी चाहता है। ये ह्यूमन नेचर है। और अंदर क्या काम करता है? वो अहंकार, ईगो। और उसके लिए किसी भी लिमिटेशन तक जाने के लिए तैयार होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और इसका सबसे बड़ा नमूना पॉलिटिक्स में देखेंगे, पॉलिटिक्स में, और आजकल कॉरपोरेट सेक्टर में भी ये बहुत चलता है इस तरह की। खैर, आजकल तो ये हर जगह चलने लगता है। तो ये राजसिक कर्म होता है, तामसिक इन दोनों से बिल्कुल अलग होता है, जहां ईगो मैटर नहीं करता, जहां इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा वो भी मैटर नहीं करता। तो क्या मैटर करता है? अनुबंधम क्षयम हिंसा मनपेक्षा च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते अनुबंधम। He doesn't care what is the what will be the consequences of what he is going to do. अच्छा होगा बुरा उसकी चिंता नहीं है। क्षय इसे लॉस होगा, नुकसान होगा, अपनी भी बर्बादी हो सकती है, who cares की सवाल ही नहीं उठता, वो दिमाग में आता ही नहीं ये विचार। हिंसा इससे किसी को कोई हर्ट भी हो सकता है, फिजिकली या और किसी रूप में किसी को चोट भी लग सकता है, उसको भी वो इग्नोर करता है, अनपेक्षा इग्नोर करता है। पौरुषम अपनी एबिलिटी है कि नहीं है भाई, पेड़ चढ़ जाते हो पता है पेड़ चढ़ सकते हो कि नहीं, ये भी नहीं पता। पेड़ चढ़ गया गिर भी सकते हो, ये भी नहीं पता गिरने पर क्या होगा। पर क्यों करता है? मोहात, इल्यूशन, डिल्यूशन इतना ज्यादा होता है, डिल्यूशन जैसे आप भांग खा लेने के बाद कुछ ज्यादा शराब चढ़ गया हो, ड्रग ले लिया हो, तो क्या करते हैं आप? जो भी करते हैं क्यों करते हैं पता होता है? कुछ नहीं पता होता है क्यों करता है आदमी। देवियों सज्जनों, ये तो सबको पता है, आप नशा कर लें, थोड़ा ज्यादा कर लें, अगर रोज रोज थोड़ा थोड़ा करते हैं, किसी दिन ज्यादा कर लें, तो आप बेहोशी में चले जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता आप क्या करते। ये सारे काम आप करते हैं, मतलब हम करते हैं, कॉन्सिक्वेंस पता नहीं होता है, गटर में गिरते हैं, रोड पर गिरते हैं, पता नहीं चलता, ये तो सबको पता है। पर ये जो डिल्यूशन है ये सिर्फ ये नशे के लेवल पर नहीं होता है। मार्क्स जो कम्युनिज्म के फाउंडर हैं, फिलोसोफर हैं, वेस्टर्न फिलोसोफर, वो तो कहते हैं जो रिलीजन है ये अफीम है। अफीम समझते हैं, नशा का एक अफीम, अफीम। और झूठ नहीं है, क्योंकि जब आप विदाउट अंडरस्टैंडिंग रिलीजियस बन चुके हैं तो आपसे खतरनाक एटम बम भी नहीं हो सकता, और उसका कंसिक्वेंस आप देखते हैं।
जब धर्म के नाम पर हम लोगों को मारते हैं दंगा में, वो टेररिस्ट मारे या हिंदू फैनाटिक मारे या क्रिश्चियन, कोई भी मारे, धर्म के नाम पर, रिलीजियन के नाम पर। हमारे भारत में आजकल एक नई ट्रेंड शुरू हुई है गाय बचाने का। तो गाय बचाने के लिए क्या करते हैं, इंसान को मार डालते हैं। ये डिल्यूशन, ये मोह, समझ नहीं पाते अब अच्छा कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो। इसे तामसिक कहते हैं। तुम्हें क्या सेटिस्फेक्शन मिलता है? कुछ नहीं। ईगो को सेटिस्फेक्शन मिलता है? नहीं। इसमें कौन सा ईगो सेटिस्फाई होगा? कुछ फायदा मिलता है? नहीं। जब किसी क्रिमिनल बाबा के लिए, जिसको मैं गुरु मानता हूं या भगवान से नीचे मानने को तैयार नहीं हूं, और उसके लिए मैं दर्जनों लोगों को मारता हूं, पीटता हूं, बसें जलाता हूं, मेरे बात बोलते ही आप सीधे भारत में मत चले जाया करिए। ऐसा अमेरिका में भी होता है, ऐसा थाईलैंड में भी होता है, ऐसा ब्रिटेन में भी होता है, ऐसा ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, वो सब देशों में होता है। आप इनका खबर नहीं रखते हैं, तो आप भारत का खबर रखते होंगे तो आप कहते होंगे चल अच्छा आपने भारत की बात कर ली। भारत में भी होता है और सब जगह होता है ये। अभी 8-10 साल पहले, क्योंकि भारत का खबर रखते हैं तो उसे उसकी देने की जरूरत नहीं है। बैंकॉक में एक बौद्ध गुरु, जो बैंकॉक का सबसे बड़ा मॉनेस्ट्री है उसका हेड, और वैसे 15-20 साल से उसके नाम पर सैकड़ों क्रिमिनल केसेस थे। पुलिस स्टेशन में तो एफआईआर होना मुश्किल है, वो भारत में भी नहीं हो पाता, कहीं भी नहीं हो सकता। अमेरिका में भी आप, बहुत मुश्किल है किसी रिलीजियस लीडर, कोई कैथोलिक का हेड होगा कि प्रोटेस्टेंट होगा, आप उसके एफआईआर लिखा दे, मुश्किल है। पर पब्लिक में लोग जानते हैं कि कितने लोगों के साथ, कितने लोगों को उसने मरवाया है, कितने लोगों के साथ सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन किया है, क्या क्या गंदे काम किया है। पर आखिर में उसको पनिशमेंट मिला, लाइफ टर्म इंप्रिजनमेंट मिला। देखिए सज्जनों, आप भारत, हर बात में हम भारत से जोड़ देते हैं, इसीलिए मैं एग्जांपल देता हूं कि आप कभी कभी भारत से और हिंदुओं से भी बाहर जाकर भी देखिए, ये एक यूनिवर्सल फेनोमेना है। रिलीजन कैसे लोगों को अंधा बनाता है। सब दुनिया को पता है कि वो मोनेस्ट्री का जो हेड है, मोंक है, बौद्ध मोंक है, वो कितना क्रिमिनल है, कितने बदमाश है, और उनके फॉलोअर्स कोर्ट की सजा मिलने के बावजूद भी पुलिस इनको अरेस्ट नहीं कर पाई। पूरी थाईलैंड की आर्मी बैंकॉक में गली गली में घूमना पड़ा, लाखों की संख्या में मिलिट्री शहर में रही, मोनेस्ट्री तक, उसके बावजूद भी वो मोनेस्ट्री से जेल तक पहुंचाने में कितने लोग मारे गए, कितने आर्मी मैन मारे गए, कितने पुलिस मारे गए, कितने आम जनता मारे गए। क्यों हुआ जी? कौन करने वाले थे उनके फॉलोअर? वो कौन है? नशे में ग्रस्त थे, वो कौन सी नशा थी? रिलीजन की। तो नशा बहुत तरह के हो सकती है। लोग पैसे के लालच में ऐसे अंधे हो जाते हैं, अपने मां बाप को भी मार डालते हैं, बच्चों के साथ पाप करते हैं। तो नशा सिर्फ नशा खाने से नहीं होता है, वो पैसे की भी नशा हो सकती है, नाम की भी नशा हो सकती है, यश की भी नशा हो सकती है, पावर की भी नशा हो सकती है, रिलीजन की भी नशा हो सकती है, नशा किसी की भी हो सकती है। और वो डिल्यूशन है, वो आपके माइंड को ब्लॉक कर देता है, आपके डिस्क्रिमिनेटिव पावर को ब्लॉक कर देता है। फिर आप करते जाते हैं, क्यों करते हैं आपको पता नहीं, अच्छा होने के नाम पर सब बुरा कर चलेते हैं। वह है तामसिक कर्म। ऐसा कर्म तामसिक कर्म होता है। अगला चलिए, मुक्त संगो नहम वादी,
धृत्ति उत्साह समन्वितः सिद्ध्या सिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते।
एक आदमी अलग अलग स्टेट ऑफ माइंड में अलग अलग टाइम पर कभी सात्विक काम भी कर सकता है, तामसिक या राजसिक, अच्छे लेवल का, बुरे लेवल का, मीडियम लेवल का काम कर सकता है। काम तीन तरह के हैं ये बताया, अभी बताते हैं काम करने वाले जो व्यक्ति, जो एजेंट है, वो भी जब काम करते समय उनके बैकग्राउंड में क्या चलता है उससे भी अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। मुक्त संग, थोड़ा बहुत रिपीटेशन है, मैं ज्यादा इसको खींचूंगा नहीं, आगे बढ़ेंगे। अगेन, जो अटैच्ड नहीं है, अनहमवादी, अहंकार अलग चीज होता है ईगो, अहमवादी दूसरी चीज होता है। ईगो का रिफ्लेक्शन जो होता है, मैनिफेस्टेशन जो होता है, वो अहमवाद होता है। अहमवाद मतलब मी, वाद मतलब बोलना, वैसे मैं, ये मैंने किया, ये मेरा है, ये मैं हूं, ये मेरा है, ये मेरे से, ये जो बोलना मैं कौन बोलता है पता है? बकरी बोलता है। अच्छा, लोग बिना पढ़ने लिखने के साथ बड़े समझदार हो जाते हैं, उनको पता चला मैं बोलना बड़ा बुरी बात है, तो लोगों ने वर्ड चेंज कर दिया, हमने किया है, तो लोगों ने सोचा अच्छा ये मैं वाला नहीं, ये अब जो आम आदमी, अच्छा ये उन्होंने सोचा कि हम सुनकर आए थे जो मैं बोलता है वो अहंकारी होता है, ये तो मैं नहीं बोलता, हाँ हम बोलता है, तो अच्छा आदमी होगा। फिर पता चला कि नहीं, ये हम और मैं एक ही बात होता है, तो लोग समझ गए भाई ये हम बोले मैं बोले बात एक ही बोलता है, लोग और समझदार होते हैं, तो उन्होंने चेंज कर दिया पब्लिक में, अब उनकी बोल में वो अब मैं नहीं बोलते, हम नहीं बोलते हैं। सब जी आपने ये बड़ा अच्छा, सब आपकी कृपा है, मेहरबानी। मेरी कब मेहरबानी, मैं तो यहां था ही नहीं, 15 साल के बाद यहां आया, मेरी क्या मेहरबानी है। तो हम खुश हो जाते हैं, देखो वो मैं नहीं करता, वो कहता है आपके कारण हुआ, पर हम भूल जाते हैं कि उसने झूठ बोला, आप कहां थे वहां। अपनी अंदर की भावनाओं को हम बड़े थोड़ा एस्थेटिक वर्ड्स यूज कर लेते हैं कभी कभी, पढ़े लिखे हो गए ना, लोगों को समझ में आ जाएगा, थोड़ा हम एस्थेटिक वर्ड्स यूज करते हैं जिससे मेरे अंदर का सेंस लोगों तक पहुंचे नहीं, पर बात लोगों की हो ही नहीं रही है। आप मुझे क्या समझते हैं वो मेरे लिए ज्यादा मैटर नहीं करता, नेचुरली मैटर करता है, सोशियली मेरे सर्वाइवल के लिए, पर मेरी स्पिरिचुअलिटी के लिए ये कतई मैटर नहीं करता। आप मुझे क्या समझते हैं, अच्छा बुरा क्या, वो तो मेरे अंदर जो चल रहा है वही मैटर करता है ना। गीता उनके बारे में बात नहीं करता है जो सोसाइटी को बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस देते हैं। मैं जिस आवाज में बोलता हूं किसी को अच्छा लगता होगा बुरा लगता होगा, पर कृष्ण मेरी आवाज पर नहीं जाने वाले जा रहे हैं, वो इंटेंशन पर जाते हैं, है ना। नहीं तो अहमवादी, अहंकार का जो मैनिफेस्टेशन है, मैंने किया, मैं, मेरा, मेरे द्वारा। अब मैं शब्द चेंज, पढ़ा लिखा होने पर शब्द भी चेंज हो सकता है, मैंने बताया, पर सात्विक कौन है? जो अंदर ये भाव रखता ही नहीं है, ये सेंस रखता ही नहीं कि वो क्या बोलता है वो मैटर नहीं करता, मैटर मेरे लिए आपके लिए करता होगा। सात्विक वो है जो अहमवाद ही नहीं है, जो कहीं भी कुछ भी कर जाने के बाद भी अपने आप को नहीं रखता है। देवियों सज्जनों, आपको गौरव अनुभव करने की जरूरत है कि आप उस कल्चर से बिलोंग करते हैं, उस ट्रेडिशन से आपका नाता है
जिस ट्रेडिशन में हजारों सालों से लाखों ऋषि मुनियों ने इतने ज्ञान के भंडार दिए, सिर्फ स्पिरिचुअल या रिलीजियस नहीं, हर हर विषय में, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, मेडिकल साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी हो, हर मामले में ऋषि मुनियों के हजारों ग्रंथ ज्ञान दिए। और पता है जो मजेदार बात है, किसी भी ग्रंथ में, आपको प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में, इंडियन जो अनसीन ग्रंथ में, किसी ने अपना नाम पता दूर दूर तक भी निशान नहीं छोड़ा है। योग दर्शन को पतंजलि ने लिखा, वैशेषिक को कणाद ने लिखा, आयुर्वेद को चरक या सुश्रुत, ऐसा बुक में कहीं नहीं मिलता। ये तो बाद में रिसर्चर लोग रिसर्च करके ढूंढ ढांढ के इधर उधर इस कड़ी को वहां जोड़ के पता लगाने की कोशिश करते हैं। पाणिनि ने लिंग्विस्टिक लिखा, पाणिनि कहीं नहीं लिखा है अपना नाम, ये भी नहीं पता वो पाणिनि उसका नाम था या उसका सरनेम था या उसका टाइटल था, ये भी नहीं पता पतंजलि उसका सरनेम था, टाइटल था या उसका नाम था। वेद का, मंत्रों का ऋषि कौन, किसी को नहीं पता। क्यों? वो रियलिटी में अहनाहमवादी थे, सात्विक थे। जबकि सच कहिए, ये उनका अपना ओरिजिनल थॉट था, उससे पहले उन्होंने कोई इस टॉपिक पर ना पढ़ा ना सुना ना जाना। जो लिखा अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर लिखा, पर तब भी हर ऋषि ग्रंथ के आरंभ में लिखता है ये मेरा ज्ञान नहीं है, ऐसा हमने जाना है दूसरों से। अगर कोई दूसरा भी नहीं तो ऐसा हमें ईश्वर से जाना है। ये ना समझ आजकल के अंग्रेजी से शास्त्र पढ़ने वाले लोग फिर प्रचार करने लग गए, पतंजलि वाज ना द ओरिजिनल राइटर ऑफ योग दर्शन, पतंजलि वाज पाणिनि वाज ना द ओरिजिनल राइटर ओरिजिनेटर ऑफ द ग्रामर वगैरह वगैरह वगैरह, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि इंडियन ट्रेडिशन क्या था, क्यों ऐसा लिखा है। आज तो लोग दूसरों के किताबों से सामान उठाकर अपने नाम पर छाप देते हैं। योग आयुर्वेद कोई पेटेंट आपको मिलता है कहीं? पर कमाल की बात है, योग और आयुर्वेद पर पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में इंक्लूडिंग अमेरिका में हजारों पेटेंट हैं। वो जिसने सचमुच योगा आसन प्राणायाम ध्यान या आयुर्वेद की अलग अलग हर्बल मेडिसिन्स जिन्होंने दुनिया को दिया, उनका नाम तक किसी को नहीं पता ठीक से, और जिन्होंने नकल कर किया, उन्होंने पेटेंट करके रॉयल्टी खा रहे हैं और दुनिया भर में नाम प्रचार कर रहे हैं। और उनमें से एक आपके इंडियन भी है, ये अमेरिका में बड़े पॉपुलर है, उनके पूरे हर शहर में स्टूडियो खुला हुआ है, योगा स्टूडियो। पतंजलि तो शायद उनके सामने सेकेंड थर्ड फोर्थ टेंथ में भी नहीं आएंगे नाम के मामले में, वो अमेरिका में बड़े फेमस हैं। तो सात्विक अनहमवादी होता है, सब कुछ करने के बाद भी बैकग्राउंड में दिखता है। कुछ लोग कुछ ना करने के बावजूद भी सबसे सामने दिख जाते हैं, तो उनमें से आप मुझे भी काउंट कर सकते हो। ये आर्य समाज में सैकड़ों लोग काम करते हैं पर सामने मैं आपको दिखता हूं, पर इसका अर्थ नहीं कि सब कुछ कोई बोलने वाला करता है, पीछे बहुत लोग काम करते हैं। ये ऑडियो सिस्टम में भी बहुत लोग बैठे होते हैं, हो सकता है आप में से बहुतों को नाम नहीं पता होगा वो कौन है। 10-10 साल से लगे हैं, 15-15 साल से आते हैं, किचन में भी होंगे आपको नाम नहीं पता होगा जो 15 साल से आते हैं खाना खिलाते हैं, लाइब्रेरी में बता नहीं सकते कौन कहां कैसा है, सामने कभी नहीं आए 15 साल से 20 साल से, चेहरा आपको 2-4 का दिखता है। अनहमवाद, सब कुछ करने के बाद भी सामने नहीं है, दैट्स द रियल सात्विक पुरुष। धृति उत्साह समन्वता, पर इसके कारण उनकी जो जोश में जो एंथुसियाज्म है उसमें काम नहीं आता है कि मुझे नाम नहीं मिला, सामने नहीं आया, रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला। इसका अर्थ नहीं कि उनके जोश में कमी है, उनके काम करने के तरीका में कोई कमी है। उतने ही जोश के साथ, उतने ही करेक्टनेस के साथ भी वो भी काम करते हैं। सिद्धि असिद्धि और निर्विकार, सक्सेसफुल हुए नहीं हुए, हुए ठीक, नहीं हुए तो ठीक, दोबारा ट्राई करेंगे। इस भाव के साथ काम करने वाला व्यक्ति सात्विक कर्ता होता है। आगे फिर हम अगले बार चर्चा करेंगे राजसिक और तामसिक कर्ताओं के बारे में। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।